कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर।
यहाँ तो परमात्मा के लिए वो प्यारी आत्मा आती है जो परमात्मा के अंश है, जो पिछले जन्मों से उनके चरणों में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वो उनके साथ रहे हैं। अब वो पार हो नहीं पाया, भटक रहे हैं, उनको फिर परमात्मा अपने बच्चों को इकट्ठा कर रहा है किसी ना किसी माध्यम से, कोई टीवी से, चैनल से, या किसी पुस्तक से, या किसी मित्र से, रिश्तेदार से, भाई बहन से अपना संदेश भिजवाकर इनको फिर शरण में ले रहा है। तो ऐसी प्यारी आत्मा जो परमात्मा के बच्चे यहां आते हैं और इनके लिए जो सेवा होती है, ये धर्म यज्ञ है। इस धर्म यज्ञ में आपका पैसा लगता है, इससे आपको पुण्य होता है, और जो पैसा आपका क्राइम लगा वो भी आपका पुण्य के अंदर लगा। अब पुण्यात्मा जैसे जो अनजान व्यक्ति हैं, जिनको इस मार्ग का पता नहीं, वो मंगलवार को सवा रुपये का प्रसाद बांटनी है, वो तो वहीं तक सीमित है। हम भी ऐसे ही थे जब तक ज्ञान नहीं था। मंगलवार के दिन सवा रुपये का प्रसाद बांटा करते, गणे उमंग भर जाती तो सवा पांच का बांट देते, बहुत खुशी होती, तो ना तो उसने बहुत गुणा पुण्य मान लेते थे। अब परमात्मा कहते हैं जिन हर जैसा सुमरिया बीता को तैसा लाभ, ओसा प्यास न भागे ही जब लग दस है नहीं आबे। कहते हैं जिसने जैसा भगवान की भक्ति सेवा दान किया उसको उतना ही लाभ मिलेगा। ओस चाटन ते प्यास नहीं बुझ सकती, वो तो गिलास पीना पड़ेगा गट 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 जब प्यास बुझेगी। तो ये जो स्वाप का प्रसाद सवा रुपया पल्ल बांध लिया माता का मरण्य हो जा, और ये छोटे मोटे जो दान हम करा करते, ये तो ओस चाटन वाली बात थी। और अब यहां आपने गिलास के गिलास पीने पड़ेंगे, और देगा वही परमात्मा। आप देखना खेल मालिक का भगवान क्या किया करता है। अभी तक हम परमात्मा से सुख लेने के लिए पहाड़ों पर चढ़ गए, बर्फों पर चल पड़े, बालक वहां मिलेगा उस मंदिर में, हम चले गए वहां मिलेगा, वहां पहुंच गए कोई संत मिला उसके पास जाने की चेष्टा की, लेकिन वो चीज नहीं मिली। अब आपको वो वस्तु मिलेगी जिसकी गुण गाया करते थे, जिसकी आपको चाह थी, तड़फ थी, और जिसके विषय में सदग्रंथ संकेत किया करते थे भगवान ऐसा करता है, भगवान कोढ़ी को स्वस्थ कर देता है, अंधे को आंख दे सकता है, बांझ को पुत्र दे देता है, निर्धन को धनी बना दे, कंगाल को राजा बना दे, और हर तरह के सुख भगवान ही दिया करता है। तो वो परमात्मा आपको अब मिलेगा, वो ही आपको सुख मिलेंगे जो भगवान दिया करता है। क्या बताते हैं, पर्वत पर्वत में फिरा भाई कारण अपने राम, फिर राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। परमात्मा की चाह में अपने संकट निवारण के लिए पर्वत पर्वत घूमा फिरा, कहीं भगवान मिल जावे, और ऐसे संत मिल गए जहां मेरे वो भगवान जो काम करता है और वो काम वहां हो गए हमारे। तो कहते राम जैसे संत मिला जिन सारे सब काम। तो पुण्यात्मा यहां आपको वो सुख होंगे आप सोच नहीं सकते, क्योंकि हम भगवान इतनी तो समझते हैं कि भगवान हमें सर्व सुख दे सकता है, लेकिन वो हो कहीं से नहीं रहे थे। अब आपको यहां से वो सुख होंगे जो आप सोच नहीं सकते कि ऐसा क्या भगवान वर्तमान में भी कर रहा है। तो ऐसे संत मिले तो हमें वो सुख हुए। परमात्मा जैसे ही संत मिले जो परमात्मा सुख देता है, तो आपको इस दास के माध्यम से कबीर भगवान परमेश्वर जी आपको वो सुख देंगे जो भगवान दिया करता है, क्योंकि वो पूर्ण परमात्मा है। जो ऐसे व्यक्ति हैं जो इस तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है, वो क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं कि भी तुम जाते हो, महीने में दो बार जाते हो, महीने में एक बार जाते हो, किराया भी लगता है, काम भी आपका, कार्य भी आप छोड़कर जाते हो, तुम क्यों अपना नुकसान कर रहे हो? अपुण्य आत्मा, अब उनको तो ज्ञान नहीं इस बात का, वो तो बालक है, अनजान है। जैसे एक कोई शहर का बाबू था, शहर में ही, बड़े शहर में वो पला, वहीं जन्मा पला, बड़ा हुआ, नौकरी योग्य हुआ, उसकी नौकरी, उसकी सर्विस लगी रूरल क्षेत्र में, गांव में, और वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए गांव में कार्यवर्ष जा रहा था। वहां पर एक खेत में किसान हल जोत रहा था बैलों से और गेहूं बीज रहा था। अब उस शहर के बाबूजी ने तो वो गेहूं अपने घर में देखे थे और एक ठेके में, एक टैंकी में, उसमें से मां निकाल कर देती थी, नौकरानी आटा पिसवा लेती थी और माता बना के भोजन दे देती थी, वो बाबूजी खाकर और बड़ा हो गया था। उसने ये नहीं पता था ये गेहूं कैसे उत्पन्न होता है, कैसे बनता है, और जैसा भी अपना व्यवहारिक ज्ञान उसको था कि भाई गेहूं की बड़ा अभाव है अपने भारत में और इसको बर्बाद नहीं करना चाहिए, बड़े संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि वैसे माता पिता भी कहते हैं भाई अन्न को बर्बाद नहीं करना चाहिए, बड़ा ये जीवन दाता है। तो वो भी भावना उसमें थी। उसने क्या देखा कि किसान एक थैले में कणक गाल के, गेहूं डाल के, और एक पाइप के द्वारा बैलों के पीछे हल्के हल पर लगे हुए उस पाइप में से और मिट्टी में वो गेहूं डाल रहा है, मिट्टी में डाल रहा है खेतों में, और कुछ गेहूं अलग रखे हैं जिनको दूसरी ट्रेन में वो उठाएगा। तो उसने देखा कि ये आदमी के क्या मिट्टी में क्या डाल रहा है, उसने देखा गेहूं रखे हैं, ये गेहूं ही बीज रहा है। तो उस किसान से कि मुट्ठी से भी उसने देखा गेहूं डालता, उसको पक्का हो गया कि ये आदमी मूर्ख है जो ऐसी बढ़िया वस्तु, खाने की वस्तु, अन्न गेहूं को और मिट्टी में डालने लग रहा, अच्छा पागल। अब उसको उस बाबूजी ने कहा उस गेहूं बीजने वाले हाली से, किसान से, कि भैया एक बार रोकना। अब किसान ने सोचा भाई शहर का आदमी दिखा है, को रास्ता पूछता होगा, उसने बैल खड़े कर लिए, रोक दिया। हाँ बाबूजी बताओ क्या काम है? तो बाबूजी ने बोला, अरे तू मूर्ख है क्या? वो शहर वाला बाबू बोला, अरे किसान तू पागल है क्या? इस गेहूं को बर्बाद कर रहा है, ये तो बहुत संभाल के रखने का है, ला गया लेक्चर देन जिसा उसने बेरा था बोड़ी पेड़ ने। अब वो किसान ने सोचा यो कितना है क्या बंदर, इसने यो मन मुझे शिक्षा देने लग रहा है उल्लू। वो समझ गया कि उन्हें बोतलू है, कह लेने दे इसने सारी। वो जब सब अपनी शिक्षा दे चुका, जब पहले उसकी मूर्खता, उसको पता लग गया कि भाई इसने पता ही नहीं होगा इस प्रोसीजर का, तब उस किसान ने उसको समझाया कि भगत जी बात सुन, मैं गेहूं को बर्बाद नहीं कर रहा, ये बर्बाद जो मैं करता हुआ नजर आ रहा हूं, ये मुझे आबाद करेगा ये गेहूं। देख एक एकड़ में 40 किलो डालूंगा, 40 किलोग्राम, और एक ट्रैक्टर की ट्राली भर के ले जाऊंगा, इतना इसमें धन होगा मुझे, यानी 40 किलो डालूंगा एक मन, तो मुझे 60-65 मन गेहूं यहां से मिलेंगे। अब वो बता रहा था लेकिन उसको समझ में पल्ला नहीं पड़ रहा उस बाबूजी के, मैं कैसे मानूं भाई, अच्छा मूर्ख है, मिट्टी में बर्बाद कर रहा है, कहता गेहूं 65 मन होंगे एक मन के। किसान ने कहा कि आप 4-5 महीने के बाद आना अप्रैल में, और फिर दिखाऊंगा तुझे, ये मैं बर्बाद कर रहा हूं, यही मुझे आबाद करेंगे। अब वो चला गया, वो फिर आया इसी प्रकार अप्रैल के महीने में, उसने देखा, किसान ने उसको दिखाया कि एक कनक का दाना डाला था और कम से कम 10-12 ये गुच्छा बन गया, देख नीचे से, और प्रत्येक पौधे के ऊपर एक एक बाली आई है, एक बाली में 30-40 दाने हैं। उसने ऐसे करके वो दिखाया, देख बाबूजी, तब उसकी चौंध टूटी, अग भाई आप ठीक कह रहे थे। तो पुण्यात्माओं, जो आज आप दान कर रहे हो, किसी प्रकार यहां भगवान के दरबार में आने का आपका किराया तक भी आपके पुण्य में लिखा जाएगा। और जो अनजान है वो तो ऐसा समझ लो जिसने कभी देखा ना हो गेहूं उत्पन्न कैसे होते हैं, उस 4 मन गेहूं को ही चिपटा बैठा रहा, उसी को सुरक्षित रखे, आगे कहां से मिलेंगे उसको। तो आप जो पुण्य कर रहे हो, ये दान कर रहे हो, यही आपको आबाद करेगा। कहते हैं देते को हर देत है, जहां तहां से आने, नहीं दिया फिर मांगते, फिर यो साहेब सुने ना कान। जिन्होंने देखो, आज एक तो इतना गरीब है फाइनेंशियली, इतनी वित्तीय हालत उसकी कमजोर है कि रिक्शा चला रहा है, एक ऐसा है मजदूरी कर रहा है, एक रिक्शा चला रहा है, एक उसके अंदर विराजमान है बैठा है, दोनों ही मनुष्य। तो पुण्यात्माओं, एक गाड़ी चला रहा है ड्राइवर, एक मालिक उसमें बैठा है, और गाड़ी भी मालिक की है। तो इतना भेद यूं क्यों हो गया? क्योंकि पिछले जन्म जन्मांतरों की जैसी भी जिनकी भक्ति शक्ति है, जितना भी जिन्होंने पुण्य किया हुआ है, वो आज आपको जो का तू दे रखा है। जिन्होंने पीछे कोई पुण्य किया नहीं, वो आज कंगाल है और एक एक पैसे को मांगते फिर रहे हैं। अब कोई नहीं सुना है। अब देते को हर देत है, जिन्होंने दान किया उनके ठाठ ठाठ कर रखे हैं। छोटा सा बच्चा बिजनेस में लग जाता है और चारों तरफ से उसके पूरी प्रोग्रेस हो जाती है, विकास होता है, क्योंकि उसने पिछले जन्म में पुण्य कर रखे, वो भगवान दे ही देगा, उसमें टोटा होने ना दे उसके। तो इस प्रकार अब आप जो दान करोगे, प्रथम तो आप इस बात से परिचित हो जाओगे कि अब जो दान करोगे उसका बेनिफिट केवल अगले जन्म में लेने की चाह मत रखना। आप जो भी पुण्य करोगे या भक्ति करोगे, अपना जन्म मृत्यु का रोग कटाने के लिए ही करना। फिर रही बात आपको यहां की सुविधाएं, ये तो अपने आप मिलेंगी, ये भक्ति का जो बाई प्रोडक्ट है, यहां की सुविधा तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देगा। ये भक्ति की विधि ऐसी है, ये भक्ति का वो यथार्थ वे है, पूजा का साधन है, जिससे आपको यहां की सुविधाएं तो अपने आप मिलेंगी, मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। जैसे गेहूं बीज दिया किसान ने, अब किसान का प्रथम उद्देश्य है कि भाई गेहूं हो, मेरा बालक मेरा परिवार भूखा ना मरे, हम जीवित रहें, अन्न को खाएं। और उसके साथ फिर भूसा और बन गया, वो टूड़ा बन गया, टूड़ा जिसको चारा बोलते हैं पशुओं का, वो तो पहले बना। उसका उद्देश्य केवल ये था कि मुझे गेहूं मिले। यहां भी आप देखते हो कि कई लोग ऐसे हैं, पैसे वाले, इतना उनका बड़ा फार्म होते हैं, इन क्रेनों से कटवा डालते हैं, गेहूं गेहूं की बाली बाली निकाल लेते हैं और नीचे वो टूड़ा चारा काट कूट देते हैं, अंदर ही पड़ा रहता है। उनका उद्देश्य गेहूं बीजना ही था, और वो जो टूड़ा है वो चारा वो फ्री में होता है, वो अवश्य ही होगा। तो आप यहां संसारिक जो आपके ये कार कोठी और धन सुविधाएं आवश्यकता है, ये तो टूड़ा समझो इस भक्ति का, ये चारा आपको आप पे मिलेगा। और असली धन है मोक्ष, जो बाली है वो गेहूं समझो मोक्ष है। हमारा उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति रहना चाहिए, ना कि वो चारा ही प्राप्त करना। अगर चारा उद्देश्य रहेगा तो आप परिपक् नहीं होने दोगे उस फसल को, गेहूं को, और कच्चे कोई पशुओं को डालकर आप भूखे मर जाओगे, कंगाल हो जाओगे। इसलिए हमने इस प्रोसीजर को पूरी तरह समझना है, और वो समझाने के लिए आपको यहां बुलाया जाता है। अब बताओ, हमने आपको यहां बुलाकर क्या क्या कराना है? कोई काम नहीं, कोई सेवा नहीं। सेवा तो हम आपको तैयार करें पावा, सारी बच्चे लग रहे हैं यहां, पुण्यात्मा जिनको पता लग गया है, लग रहा है कि ये सब अपने भाई हैं, सतलोक के वासी हैं, अब ये भूल भटक गए, यहां काल के जाल में फंसे हुए हैं, और इनकी जितनी हम सेवा करेंगे ये मालिक के बच्चे हैं, परमात्मा लाभ देगा सेवा करने वालों को। और आपकी फिर यहां ऑपरेशन होगा मोतियाबिंद का, तुम कहां फंसे हुए हो, क्या करना था, यहां आए किस लिए थे, तुम कर क्या रहे हो? कोटि जन्म तन भर मत हो गए कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरवा बोरे कौआ हंस बुगारे। करोड़ों जन्म हो गए तो आप जी ने यही कर्म करते ना, अभी तक कुछ भी पल्ला ना पड़ा। आज कोई फैक्ट्री मालिक है, मृत्यु हो जा, कल गधा बन गया, ओ तेरे की। फिर कभी मनुष्य जीवन मिला, फिर कोई पुण्य किया, फिर मनुष्य जीवन मिला, जब वो उसको फैक्ट्री मालिक बना देगा, और फिर मृत्यु। इस जन्म मृत्यु के रूपी रोग से मुक्त होने के लिए आप जी ने इस ज्ञान को समझ कर इस भक्ति मार्ग को उसी उद्देश्य से ग्रहण करना चाहिए जो इसका मूल उद्देश्य है। देते को हर देत है जहां तहां से आन, अन्ना दिया वो मांगते फिर यो साहेब सुने नी कान। अपने आत्मा आप कथा सुना करते थे कि द्रौपदी को नंगा करने लगे, उसका चीर उतारना चाहते थे, और उसका चीर नहीं उतरा, उसको नी वस्त्र नहीं कर सके। उसके पास कौन सा जादू था, वो भी तो एक इंसान थी। और आप यहां देख रहे हो ना जाने कितनी बहन बेटियों के साथ बेइज्जतियां की जाती हैं, उनकी रक्षा क्यों नहीं होती? वो क्या वो पुकार नहीं करती आपत्ति में? क्या वो भगवान को याद नहीं करती उस समय जब उनके ऊपर आपत्ति आती है, कोई दुष्ट दुखी करता है? अवश्य करती है, लेकिन उनका पिछला कोई संस्कार पुण्य ऐसा नहीं जिसमें भगवान मदद कर सके। तो ये दुर्गति नकली संतों ने करवा रखी है हमारी, जो जिनके पास भक्ति मार्ग था नहीं, संत बन बैठे, उनके आधार पर ये भोली आत्मा उनको संत परम संत जान के वहां अपना जीवन बर्बाद करके भूत प्रेत बन गए, कोई गधा बन गया। अब ये इस परेशानी को उठा रहे हैं और साथ में और दोषी बन रहे हैं, दूसरों को सताकर ये पाप भूत बनकर भी पाप कमा रहे हैं, दूसरों को दुखी कर रहे हैं। अब यहां आने के बाद परमात्मा इनको सीधा कर देगा, अब पे भाग जाएंगे, परमात्मा की भक्ति की में इतनी शक्ति होती है। अपने आत्माओं द्रौपदी जो थी उसकी रक्षा क्यों की भगवान ने? क्योंकि उसने पुण्य किया हुआ था। वो पुण्य कैसे किया था? एक समय परमात्मा कबीर जी परमेश्वर कहते, सौ छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, हरणाकुश उधर विदारिया और नरसिंह धर लिया साज। अपने आत्मा आपको कुछ दिनों समझ में आएगा कि ये नरसिंह कौन बना था। ये वो परम शक्ति आई थी पूर्ण परमात्मा, उसने नरसिंह रूप धरकर और उस बालक भगत की प्रहलाद की रक्षा की थी और हिरण्यकशिपु का विनाश किया था। तो कहते मैं ऐसे नरसिंह रूप धारण कर लेता हूं, ऐसे ही वो परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं पर आने वाले आपदाओं भविष्य में जो आनी है उनको बचाने के लिए ना जाने कौन सी लीला कर दे। परमेश्वर कहते हैं हम चारों युगों में आते हैं, कबीर जी बताते हैं, सतयुग में हम सत्सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणा में नाम से, और कलयुग में वो कबीर नाम से आए। और उसके बीच में भी वो परमात्मा अन्य रूप बना करके कुछ समय कहीं रह करके लीला कर जाते हैं। ऐसे ही वो परमेश्वर, अब हम यहां आपको उसी दृष्टिकोण से बताएंगे, परमेश्वर एक संत की लीला कर रहे थे और वो संत आंखों से अंधा था, उसके पास केवल एक लंगोट था, कोपीन थी। गंगा पर स्नान करने के लिए गंगा में प्रवेश कर लिया। अब सुबह का समय था, मुंह अंधेरा था, उसमें जाकर के गंगा में स्नान करने लगा। उसी समय द्रौपदी अपने पिता के घर पर थी, वो कवारी थी, उसकी शादी नहीं हुई थी, सहेलियों के साथ स्नान करने के लिए गंगा पर जाती थी। गंगा के किनारे उसके पिताजी ने एक जनाना घाट बना रखा था, यानी वहां एक स्नान गृह बना रखा था लड़कियों के नहाने का। तो द्रौपदी की सहेलियां और द्रौपदी वहां स्नान करने प्रतिदिन जाया करती थी। अब जो ही वो लड़कियां स्नान करने के लिए गई तो लड़कियां की आवाजें एक दूसरे से बातें करती हुई चलती हैं, दूर तक पता चल जाता है लड़कियां जा रही हैं। तो उस संत ने सोचा कि भाई लड़कियां स्नान करने के लिए यहां आ रही हैं और यहां अवश्य कोई घाट है, और तू तो गलत जगह आ गया, जनाना घाट के पास आकर तू स्नान करने लग गया। इस शर्म के मारे उसके तन पर केवल एक कोपिन थी, पर्दे पर लंगोट था ओनली। इस शर्म के मारे वो दरिया में गहरा चला गया और छाती पानी में, इतने पानी में अंदर प्रवेश कर गया। अब द्रौपदी ने देखा कि साधु संत स्नान कर रहा, साधु भक्त और पुण्यात्माओं, भगत के अंदर एक विशेष प्रेरणा होती है, क्योंकि हमें पता है कि परमात्मा न जाने किस रूप में कहां दर्शन दे दे। तो पुण्यात्मा के अंदर संत की वेशभूषा में परमात्मा दिखाई दे जाता है, वो सोच लेता है साधु है, भक्त है, भगवान की चर्चा करता है, इसके पास बैठ कर कुछ देर भगवान की चर्चा करेंगे। तो द्रौपदी ने इस दृष्टिकोण से देखा कि साधु मिल गया सुबह सुबह और इसे भगवान की चर्चा करेंगी। उसने देखा कि स्नान कर रहा है, हम भी स्नान कर लेती हैं। कहते हैं साधु दर्शन राम का मुख पर बसे सुहाग, और दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। कबीरा दर्शन संत का परमात्मा आवे याद, और लेखे में वाएगड़ी बाकी का समय व्यर्थ बाद। अपने आत्माओं जितना समय आपको मालिक ने आने का दिया है, चर्चा सुनने के दिया है, ये एक विशेष घड़ी है आपकी, एक विशेष समय है, ये आपके बहुत अच्छे अकाउंट में, गुड अकाउंट में लिखा जाएगा। तो इस दृष्टिकोण से लड़की स्नान करने लगी, वो द्रौपदी जी भी स्नान करने लगी। स्नान करने के घंटा आध पौन घंटा उन्हें लगा, बाहर आए देखा कि साधु चला तो नहीं गया है। तो द्रौपदी ने क्या देखा कि साधु स्नान नहीं कर रहा है, वो तो ऐसे कोई वस्तु खोज रहा है। फिर उसने देखा ध्यान से कि इस महात्मा की तो बाहर पटड़ी पर कोई वस्त्र नहीं है, और लगता है इसकी कोपिन पर्दे का कपड़ा इसका बह गया। तो क्या हुआ, उस संत का स्नान करते समय जो उसने एक धागा तागड़ी बांध लेते हैं बेल्ट की तरह, एक छोटा सा धागा बांधा करते हैं पतला सा, उसने यहां हरियाणा में तागड़ी बोले, एक बेल्ट टाइप, और उसमें लंगोट उड़ा लिया करते वो ऊपर आगे पीछे, और वो तागड़ी टूट गई, वो कोपिन भी बह गई, निवस्त्र हो गया संत। अब वो पहले इतने जल में था तो फिर इतने पानी में चला गया और हाथ मार रहा है कि हो सकता है ये लड़कियां नहाएं, कोई इनका कपड़ा बह के आ जावे, अपने पर्दे पर बांध के मैं बाहर चला जाऊं, आज तो बड़ी मुश्किल हुई। अब वो सोच रहा था ऐसा, हाथ मार रहा था कि शायद कोई हाथ लग जावे, ऐसे ऐसे कर रहा था। अब लड़की ने देखा कि नहा नहीं रहा है, तो क्या बात है, ऐसे ऐसे हाथ कर रहा है, ऐसे ऐसे तो देख लिया आपने विचार करके कि इसका तो कोई कपड़ा निवस्त्र है ये, और कपड़ा इसका खो गया। तो लड़की ने, द्रौपदी ने अपनी साड़ी, एक तो स्नान करने बांध के गई थी वो उसमें से नहीं दिया, उसने जो नई धोती धोई दाई कपड़ा था उसका, जो बांधना था उस दिन पहनना था नहाकर, उसमें से एक गट, एक बिलांत यानी 9 इंच 8-9 इंच कपड़ा पाड़ा और जल में बहा दिया। उसने सोचा ये जल में बहता हुआ महात्मा के हाथ लग जाएगा और ये उसमें बांध के अपना चला जाओगा, बाहर आ जाएगा। तो महात्मा के हाथ नहीं लगा, संत के हाथ नहीं लगा, उसने फिर दूसरा कपड़ा पाड़ कर डाला, फिर तीसरी ऐसे ही एक स्ट्रिप सी पाड़ी, टुकड़ा पाड़ा कपड़े का साड़ी से फिर डाला, ऐसे 8-9 लीर, उसका लीर बोलते हैं हरियाणा में, लीर यानी एक टुकड़ा लंबी कतरन सी, वो 8-9 पाड़ के डाल दी, 8 यानी 8 × 72 यानी 5-6 फुट के करीब कपड़ा डाल दिया, महात्मा का हाथ लग गया। अब लड़की ने सोचा भाई साड़ी भी तकरीबन डाल पाड़ डाली और इसका काम आया को ना, वो नो सोचे थी कि कहीं मैं बोल पड़ी और निकट जाऊंगी महात्मा शर्मा जागा, शर्म का मारा कहीं आगे को ना सरक जा, दरिया का बहाव बहुत ज्यादा है कहीं डूब ना जा। फिर उसने सोची तो मुंह तो नहीं बोलूंगी, बोलूंगी नहीं, एक लंबी लकड़ी ले ली, जंगल से लंबी लकड़ी लाई ढूंढ गए और उसके एक लीर और पाड़ी, एक टुकड़ा और फाड़ा 8-9 इंच का, और उस लकड़ी का लपेटा देकर, और महात्मा ऐसे हाथ मार रहा था उसके हाथ के निकट कर दी। जो ही उसके हाथ लग्या लड़की महात्मा का संत का, एकदम उसने पकड़ा देखा, अको हुए तो बड़ा साइज का कपड़ा मिला है। ओहो हे भगवान, हे परमात्मा, जब आशीर्वाद दिया के हे प्रभु आपने बड़ी दया करी अपने दास पे, और फिर हिसाब लाकर देखा कि ये कोई कपड़ा वैसे नहीं आया, ये किसी बेटी ने, क्योंकि अंधे के हाथ आंखों का काम करते हैं। उसने सब हिसाब देख लिया, ये साड़ी का कपड़ा है और किसी बहन बेटी ने डाला है। तो आशीर्वाद दिया कि बेटी आज तने मेरा मेरी इज्जत रखी है, भगवान तेरी इज्जत रखे और भगवान तने घणाए दे। अब कहते हैं संत बोले सहज सुभा और जो चाहे सो कर दे, साध वचन पलटे नहीं चे पलट जाओ ब्रह्मंड। अब उस आशीर्वाद दिया हृदय से दिया अपने आत्मा, यहां देखो खेल भगत कैसा होता है, लोभ करे तो ऐसा करे, लालच करे तो ऐसा करे, ये नकली लालच नहीं करे, किसी का जो है ना मिलावट कर दी, किसी का घाट तोल दिया, किसी का कुछ गड़बड़ कर दी, ये लालच माड़े हैं, ये गलत होते हैं। लोभ करे लालच करे तो ये करे कि वहां लड़की ने, देखो द्रौपदी राजा की लड़की थी और नौकरानियां और सहेली छोटे घरों की होती थी, ना जाने कितनी उनके साथ थी, और वो एक बंदी को कहती कि तू अपनी साड़ी में तो फाड़ के टुकड़ा डाल दे, तो तुरंत डाल देती, पता था कि राजा की लड़की मुझे इससे भी सुंदर साड़ी लाकर नई दे देगी, और राजा की लड़की का आदेश मोड़े कौन नहीं, उसको उल्लंघन नहीं हो सकता। लेकिन वहां उसने देखा कि यदि मैं अपनी साड़ी आज मैं दान करूंगी मुझे मिलेगा, और बंदी करेगी तो बंदी को मिलेगा, इतनी गलती मैं क्यों करूं, अपनी मजदूरी इसको दूं। तो यहां भगत को इस दृष्टिकोण से भी बहुत सोचना होता है, अपना लालच लोभ अब इस टाइप का करे, यहां के धन जोड़न का लोभ आपका विनाशक होता है, और लूटन का नहीं करे, लूटने का करे परमात्मा के नाम पे, फिर देखना। अब वहां तो वो अपने घर चलेगी, संत चले गए, द्रौपदी का ब्याह हो गया। विवाह होने के बाद फिर राजा युधिष्ठर ने एक महल बनाया शिष्य का, द्रौपदी पांचों पांडवों की साजली पत्नी मां के आशीर्वाद से होगी। उधर से दुर्योधन जो था वो धृतराष्ट्र का पुत्र था, और युधिष्ठिर अर्जुन हर का चचेरा भाई था, यानी ताऊ का लड़के थे। अब धृतराष्ट्र अंधा था, पांडव उनका पिता जो था युधिष्ठिर हर का वो अंधा नहीं था, तो उसको बड़े भाई को वैसे राज, बड़े बेटे को राज मिलता है, धृतराष्ट्र को राज नहीं मिला था इस कारण से, अंधा होने के कारण, इसलिए युधिष्ठिर के पिताजी को राज्य प्राप्त हुआ था। उधर से दुर्योधन ईर्ष्या रखता था कि ये राज हमें क्यों नहीं मिला। उधर क्या हुआ कि जब इन पांडवों ने अर्जुन होर ने एक महल बनाया शीशे का, काफी शीशा लगा हुआ था अधिकतर उसमें आर पार पारदर्शक, और एक दिन दुर्योधन उसमें चला गया महल में, द्रौपदी वहां पर थी, उसने देखा कि दुर्योधन की टक्कर लगी, शीशा दिखा कोनी, टक्कर लगी तो एकदम वो ऐसे गिरता हुआ मुश्किल से बचा, और द्रौपदी ने हंस के मजाक करते हैं जैसे अपने छोटे पति के छोटे भाई से यानी देवर से मजाक कर दिया, कहा कि अंधों की संतान अंधी ही होती है। अब उसने कहा था एक हंसी मजाक में और वो मान गया दुख गणा। इस बात को सुनकर उसकी तनमन में आग लग गई और उसका प्रतिशोध लेने की सोचने लग गया। तो क्या किया उन्होंने, जुए में युधिष्ठिर को खिलाया और जुए में सारा राज भी जीत लिया और द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया युधिष्ठिर ने और द्रौपदी भी जीत ली। अपने आत्माओं आम जिन के गुण गावे इस महाभारत ने पढ़ के हमारा जी होया करते प्रसन्न होते थे, हमें कोई पुण्य मिलेगा। इनकी कहानी पढ़कर देखे तो ये भगवान बता, ऐसा भी कोई निकम्मा होगा अपनी पत्नी ने जुए पर ला दे। इनके सारे इतिहास इतने बेकार और हम इन न पढ़ा करते, इनसे हम क्या शिक्षा लेते? आगे देखना क्या होगा इनका, इस कथा के अंदर आपको बहुत निष्कर्ष मिलेगा। अब उधर से एक नौकरानी भागी आई दौड़ी दौड़ी। दुर्योधन ने कहा कि जाओ लाओ उस अर्जुन की पत्नी को यहां बैठाओ मेरी जांग पे लाके नंगी करके। देख कितनी बेहुदी बात और भरी सभा में। अब ये बात सुनकर वह नौकरानी भागी आई थी किसके पास, द्रौपदी के पास, और कहा द्रौपदी आज तो बात बिगड़ गई, आपको जुए में जीत लिया कौरवों ने और आपको वहां पर नंगा करेंगे। दुर्योधन कह रहा है कि उसने मुझे अंधे की संतान कहा था और हम अंधे की संतान हैं, हमें कुछ दिखाई नहीं देता, वो उसको शर्म क्या आएगी, उसको नंगा करो मेरे सामने, हम तो अंधे हैं। अब द्रौपदी का यह बात जची नहीं, कैसे कैसे हो सकता है। उस नौकरानी से द्रौपदी ने पूछा वहां और कौन बैठे हैं कि पांचों पांडव बैठे हैं, चाचा विदुर बैठा है और विषम पितामह द्रोणाचार्य और कर्ण और साथ में 101 कौरव बैठे हैं। द्रौपदी ने कहा कि नालायक इतने आदमियों में और मुझे नंगा कैसे करेंगे, तेरा दिमाग खराब है। अब नौकरानी नहीं बोली, अकागे क्या बोलूं, मैंने जो सुना था बता दिया। इतने में दुशासन जो दुर्योधन से छोटा था वो दुष्ट गया और द्रौपदी को पकड़ के केस बाढ़ पकड़ के और घसीट के लाया और वहां खड़ा कर दिया। और दुर्योधन ने कहा कि इसके कपड़े चीर उतार दो, इसको नंगा करो और मेरे जांग पर बैठा दो। यानी गंदा, कितनी बेहुदी हरकत, और भरी सभा में वो दुष्ट करने जा रहा था और वहां कौन कौन विद्वान थे, पांचों पांडव बैठे हैं उसके पति द्रौपदी के और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जो गुरुजी थे और कर्ण, ये तीनों एक नंबर के योद्धा थे। और इन तीनों में से एक भी खड़ा होकर ये कह देता उस दुर्योधन और दुशासन को खबरदार इस बेटी का हाथ लगाया, वो इतने योद्धा थे, पता था दुर्योधन और को कि तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे, तो हिम्मत नहीं थी दुशासन और दुर्योधन की इस द्रौपदी की चीर का हाथ लाने की। लेकिन उस दुर्योधन के मलिन अन्न को खाकर उनकी भीष्म पितामह द्रोणाचार्य और कर्ण की भी आत्मा मलिन होगी, उनके अंदर भी गंदापन छा गया और उस लड़की को नंगा देखने के लिए वो भी वहीं विराजमान रहे। और उन्होंने उठकर ये भी नहीं कहा तुम के जुल्म कर रहे हो, क्या करने जा रहे हो, इंतजार करते रहे बैठे हैं कि कब नंगा हो, कब नंगी होगी। तो उनमें के मलिनता होगी, सोच लेना पुण्य आत्माओं, जिनको हम बड़े बहादुर और बड़े नेक व्यक्ति मानते थे। उस पूरी सभा में जब उसने देखा अपने पांचों पांडवों की तरफ, पांचों पांडवों की ओर देखा कि ये अभी इन कौरवों को सीधा कर देंगे, मेरी बेइज्जती को नहीं देख सकते, लेकिन वो बंध चुके थे, वो उसको दांव पर लगा चुके थे, वो मर्यादा में बंद कर बैठ गए थे, उन्होंने भी ऊपर को नहीं देखा। जब द्रौपदी ने पुकारा मेरी रक्षा करो, पांचों पांडव नीचे जमीन पर ऐसे गर्दन करके और ऐसे जमीन खोदने लगे। फिर भीष्म पितामह द्रोणाचार्य और कर्ण से पुकारा को पुकारा कि मेरी रक्षा करो, वो तीनों ने भी कोई उत्तर नहीं दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। केवल एक विदुर था जो भक्ति बीज था, जो एक पुण्य आत्मा था, वो खड़ा हुआ और दुशासन से कहा कि दुशासन, अरे दुर्योधन, तुम किसको किसकी बेइज्जती कर रहे हो? अपने ही परिवार की? अरे पांडवों की बहू और कौरवों की बहू में क्या अंतर है? दुनिया के एक वेगी अपनी इज्जत आप पे उतार रहे हो, तुमने कुछ शर्म आनी चाहिए, कुछ लज्जा करो। तो दुर्योधन ने कहा, दुशासन इसका दर्दे दो दड़ाक, यो तो भाई सदा पांडवों की तरफ बोलता है, ये चाचा नहीं दुश्मन है, ये इन्हीं का चमचा है, इन्हीं की ओर बोलता है। अब दुशासन ने अपने चाचा के थप्पड़ मारा और कहा कि तू तो इन्हीं की ओर बोलता हमेशा, हमारा तने कभी पक्ष नहीं लिया। तो विदुर जी वहां से उठकर चल पड़े। पुण्यात्माओं, जो भगवान से डरने वाले इंसान होते हैं, वो न तो अत्याचार देख सकते हैं और न सहन कर सकते हैं। अब उसने देखा कि यहां तेरी बात नहीं चली, कहनी थी वह कह दी। पंचायत में जो पुण्यात्मा भगवान से डरने वाले हो, उन पंचायतियों ने स्पष्ट बात कह देनी चाहिए, इसको मानना चाहिए मत मानना, नहीं तो वो दोषी हो जाते हैं। तो विदुर ने अपने जो कहना था वो कह दिया कि ये गलत कर रहे हो, तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसमें विदुर को उन्होंने थप्पड़ मार दिया, लज्जित किया, विदुर उठकर चला गया। अब क्या बताते हैं, विदुर कह ये बंधु थारा, एक कह कुल एक कह परिवारा। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, तू तो है पांडवों का चेहरा, तू तो है बांदी का जाया, भीष्म द्रोण और कर्ण मुस्काया। अपने आत्मा इनके इतिहास देखना, जिनको हम बड़े महान आत्मा समझ कहा करते, भीष्म दादा भीष्म। अब जब उसने थप्पड़ मारा, दुशासन ने अपने चाचा घर ने बोला, तू तो बांदी का जाया है, बांदी का जाम है, तेरे अंदर तो ये हीन भावना ही रहेगी, तो सूरवीर थोड़ा ही है। तो उस बात के ऊपर वह तीनों हंसने लगे, कौन? भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण। जबकि उन्हें खड़ा होकर कह देना चाहिए था, बेशर्म तेरे शर्म ने अपने चाचा पर हाथ उठा दिया, अपने बाप का मार दिया, तेरे चाचा का मार दिया, तो ये सोच। लेकिन वहां दांदरे का डर लाए गए, दायत्रे का डर है, और उन्हें धमकाना चाहिए था अपने उस बच्चे को। तो पुण्यात्मा, इस काल के जाल को ऐसे समझा जाएगा। अब वो तीनों हंसने लगे, जब द्रौपदी ने देखा कि ये दांदरे काट रहे हैं, ये किसकी मदद करेंगे तेरी, जब उसने प्रार्थना भी करी मेरी रक्षा करो, नीचे को गर्दन कर ली और बैठे रहे। अगर भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण के मन में दोष नहीं होता, उठकर चले जाते और उधर से दुशासन चीर पकड़कर उसको नंगी करने के लिए तैयार है और वो बैठे हैं वहां पर। तो पुण्यात्माओं, जैसे हम संसारिक लोगों का सहारा जब तक लेते हैं, वो सहारा पूर्ण नहीं होता, कच्चा होता है। जैसे हम किसी अच्छा रिश्तेदार है, पैसे वाला है, हम उसको अपना मानकर काख पीटते हैं, भाई हमारा रिश्तेदार बड़ा साहूकार है, उस साहूकार रिश्तेदार पर 20,000 रुपये ले आओ एक बार उधारे, और वो दो वर्ष मत देना, और फिर जाना उससे मांगने, जा अपने चाह ने भी टोक लेते हैं, नुगा पैसे दे मेरे पहले वाले। अब वही पता लग लेगा कि और उधारे दिए वो तो, और ऐसा इतना जता देगा, उठाया जाना रखा जा। और दूसरे मान लिया आप किसी मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की आड़ में, अन्यो सोच लो हम तो बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, कल ना उसकी टिकट कट जाए, मृत्यु हो जाए, या वो पद पर ना रहे, फिर क्या, ये सहारा कहाँ गया? तो हमने वो एक ही सहारा चाहिए जो मालिक का सथाई है, जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ सकता। तो जब तक हम संसारिक लोगों का आश्रय तकते हैं, तो परमात्मा मदद नहीं करता, साइलेंट रहता है भगत के लिए। वैसे तो जो अपना किया है वो कर्म भोग ही रहा है। जब द्रौपदी ने देख लिया भाई ना तो ये पांचों पांडव शीश ऊपर न कर रहे, क्योंकि ये बंद गए, इन्होंने जिता दिया मेरे को, अब ये मर्यादा में बंद गए, और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य और कर्ण ये इसका रोटी खाकर इस दुष्ट की ये बंध गए। अब किस तरह पुकार करूं। तब उसने जब इंसान का संसारिक सहारा समाप्त हो जाता है, जब भगवान याद करता है परमात्मा अब तो तू ही है मेरा। अरे भले आदमी पहले भी यही था, तेरा भूल थी, तुम इनको अपना मान रहा था जो तेरे नहीं थे। ये स्थाई सहारा नहीं था जिनको तूने अपना जो है सहारा माना था। तो जब उसने पुकार करी है परमात्मा, जब देख लिया कोई रक्षा करनिया नहीं, तेरी बेइज्जती होगी, जुल्म हो गया, तो इतना मनंगी होगी। अब बेटी ने सबसे बड़ी चिंता होती है, सबसे बड़ा दुख है इसकी जीवन का। तो एकदम उसने हृदय से पुकारा, आत्मा रोई, पुण्यात्मा रोते सभी आपत्ति में। लेकिन क्या होता है कि यहां आत्मा की पुकार परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सुनता है, मन की बकवाद नहीं सुनता। मन तो पता नहीं क्या क्या मांगे, कदे गाड़ी मांगे, कदे कार, कदे रेल मांग ले, इसका नहीं मेरा के मांग है। और आत्मा मांगेगी आपत्ति में खास चीज जो जरूरत होगी उसकी, तो आत्मा के साथ देता है। तो जो ही उसकी आत्मा की पुकार, और यहां एक धर्मराज बना रखा है इस ज्योति निरंजन ने, और उस धर्मराज के पास न्यायाधीश के दर उसमें कंप्यूटर में यानी सबके पुण्य डिपॉजिट होते हैं, जिसका जैसा पुण्य बना है शुभ कर्म। तो जो ही उस भक्त आत्मा ने पुकार की, तो उसी समय द्रौपदी की जो पुकार थी वो धर्मराज के दरबार में गई, और वहां एकदम वही कंप्यूटर की वो फाइल खुल गई द्रौपदी वाले प्राणी की, जीव की। तो धर्मराज ने देखा भाई आपत्ति आई है इस आत्मा पर देखो इसका कोई मदद बन सकती है कि नहीं। उसने जो ही उस कंप्यूटर में देखा तो एक संत, परम संत को इसने बगैर किसी डिमांड के, नी इच्छा के, एक इम्पोर्टेंट दान कर रखा है, पूरी साड़ी की साड़ी दान कर रखी है। और संत ने उसके प्रतिफल में एक आशीर्वाद दिया है, और इसके प्रतिफल में मैं इसका खूब मदद कर सकता हूं। तो वहां से वो बटन ऑन कर देता है। तो क्या होता है कि यहां पांचों पांडवों के जो आध्यात्मिक गुरु थे वो श्री कृष्ण जी थे। पुण्यात्माओं जैसे भी जिस भी इष्ट की जिसने भक्ति करनी है उसका गुरु अवश्य होना चाहिए, तभी उसको कुछ राहत ईश्वरीय एक्स्ट्रा एड मिलती है। तो उधर से वो धर्मराज के दरबार से, और वो जो पुण्य था वो आया श्री कृष्ण जी के अंतःकरण में, उसके कंप्यूटर में टक्कर मारी आकर एकदम। और ये सब लीला पूर्ण ब्रह्म करवाता है, कबीर भगवान करता है। उसमें श्री कृष्ण जी अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ अपने महल में शतरंज खेल रहा था। अब इस बात को समझना पुण्यात्माओं, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान है, बड़ी गहराई से सोचना पड़ेगा आपने कि हम किसको कर्ता मान रहे थे, वास्तव में कर्ता है कौन। तो जब वो रुक्मणी के साथ वो खेल रहा था शतरंज, तो उसमें पासे डालते हैं ऐसे, और पासे डालते डालते कोई शब्द बोलते हैं, कच्चे 11, पक्के 12, पौ 12, या जैसा भी कोई ऐसा बोलते ले, ऐसे बोलता हूं, ऐसे मांगता हूं, वो मिलते क्या है ओड़े सोड़े, वो कब बाद की बात है। तो जो ही श्री कृष्ण जी ने पासे डाले, उधर से वो कंप्यूटर धर्मराज के दरबार से कंप्यूटर से रिफ्लेक्स होकर के वो पुण्य आया श्री कृष्ण जी के पास, और एकदम श्री कृष्ण उसमें पावर आई, एकदम श्री कृष्ण जी का हाथ ऐसे आकड़ गया, पौ 12 नहीं बोला, कच्चे 12 18 नहीं बोला, हाथ ऐसे करके कहने लगा अनंत, जैसे किसी में प्रेत आ जा रहे एकदम कहता कुछ रोकड़ जोक रोकड़ करने लग गया, ऐसे उसमें ऐसी क्रिया श्री कृष्ण जी की होगी। तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ा और हंसने लगी, कहने लगी ये अनंत क्या है, ये कहता 11 बोल के 12 बोलने थे, ये अनंत क्यों कहा। तो वहां श्री कृष्ण जी ने के अंदर वो चेतना दी काल परमात्मा ने, अब क्या बोली वो पावर जो श्री कृष्ण जी के अंदर आई थी। रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई, हाथ पकड़ के हंसन लगी, और अनंत कहा मोकू समझाई, यो अनंत क्यों कहा तने मुझे समझा, अब कहते हैं दूसरा सन ने द्रौपदी पकड़ी और हमरी भक्ति सकल में सिकरी, जय हमरी भक्त पिछोड़ी होई तो हमरा नाम न लेवे कोई। तंदे ही से पासा डारी, वो तो वहां खेल रहा है फिर पासे खेलने लग गया इतना कहकर, तो वहां से वो शक्ति, वहां से जैसे अब यहां कंप्यूटर आजकल जो चल पड़े हैं इनसे बहुत कुछ राहत हमें आध्यात्मिक ज्ञान सुनने में मिलती है। जैसे कंप्यूटर लिखने वाले क्या करते हैं, एक पॉइंट से लेते हैं फिर उससे आगे उसका लेखन कार्य उसी से करते हैं कितना कर लो जाए, तो ऐसे वहां से वो शक्ति, फिर वो परमात्मा सूक्ष्म रूप धार कर कबीर भगवान गुरु मर्यादा को रखते हुए वो पूर्ण ब्रह्म सूक्ष्म रूप धारण करके और श्री कृष्ण रूप बनाकर द्रौपदी के शीश के ऊपर आकर विराजमान हो गया, बाहर पीछे से ऐसे कर दिया, आशीर्वाद दिया पीछे खड़ा होकर के, किसी को नहीं दिखाई दे रहा। कहते हैं तंदे ही से पासा डारी, पहुंचे सूक्ष्म रूप मुरारी, खेचत खेचत खेच कसीसा, सिर पर बैठे हैं जगदीशा, द्रोप्त सुताकू दीने लीर, ताके अंत बढ़ाए चीर, उस अंधे को कोपिन दी थी, द्रोप्त सुताकू दीने लीर, एक टुकड़ा दिया था साड़ी का और जाके अंत बढ़ाए चीर। अब खेचत खेचत खेच कसीसा, सिर पर बैठे हैं जगदीशा, द्रोप सुता के चीर बढ़ाए, संख असंख पार नहीं पाए। अब दुशासन ने खूब जोर लगा लिया अपनी तरफ से, खेच खेच कर ढेर लग गया वहां साड़ी का, अंत नहीं आया। दुशासन इतना तगड़ा बताते हैं कि कई हजार हाथियों की ताकत, इतना जैसे आजकल हॉर्स पावर से बिजली की ताकत नापते हैं ना, उसमें आदमिया की ताकत एलिफेंट पावर से नाप्या करते हैं, तो 1000 एलिफेंट पावर का था वो दुशासन। अर्द्रोपती एक कोमल सी बेटी, भक्ति की शक्ति के सामने वो राक्षस फीका पड़ गया, उस कोमल कमल के फूल जैसी उस लड़की का वो पत्ता भी नहीं तोड़ सका, यानी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। तो जिन्होंने प्रभु का आश्रय लिया है विधिवत, तो उनको कहते हैं देते को हर देत है, जहां तहां से आन और ना दिया वह मांगते फ्री हो फिर परमात्मा सुने नहीं का। तो पुण्यात्मा, अब जैसा भी आप पुण्य धर्म करते हो वो आपके गुड अकाउंट में लिखा जाता है। जब तक आप परम संत पूर्ण परमात्मा की शरण में नहीं आते तब तक आपके जो पुण्य डिपॉजिट भी होते हैं वो भी काल यहीं बर्बाद करवा देता है। आज जैसे द्रौपदी के ऊपर ये तो आपत्ति टल गई और फिर केवरान मटी हुई, हिमालय में जाकर गल गए, राज्य भी गया कुछ नहीं रहा, फिर नरक में डाल दिए गए। अब हमने यहां केवल इतना ही लेना है कि आप यहां परमात्मा के चरणों में आए हो, आपका प्रथम उद्देश्य ये हो कि मेरा जन्म मृत्यु का रोग कटे, क्योंकि आप जी ने असंग जन्म हो गए, यहां जन्मते और मृत्यु को, कभी राजा भी रहे कभी आप रानी भी रहे और फिर भिखारी बनकर भी घूमते रहे, अब कहीं पर भी आपको स्थाई स्थान नहीं मिला। जैसे आपने पुण्य किए तो आप स्वर्ग चले गए। स्वर्ग क्या है? ये एक होटल है, एक रेस्टोरेंट है, जैसे कुल्लू और मनाली शिमला गर्मियों के दिनों में साहूकार लोग 10-20 हजार 50 हजार रुपए ले जाते हैं और एक महीना 2 महीने वहां होटल में कमरा किराए पर लेकर और वहां रहते हैं, ठाठ करते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, बड़ी ठंडा मौसम होता है, हिली स्टेशन है और लेकिन वो पैसे जेब से उन्हीं के लग रहे हैं, होटल का किराया खाने का खर्चा। जब वो 2 महीने वो 50 हजार रुपये खर्च हो जाते हैं परिवार के, तो फिर वो अपने कर्म क्षेत्र में आ जाते हैं कंगाल होकर, और फिर अगले सीजन में क्या पता सूत बैठे 50 हजार सेविंग हो उनका ना हो। तो इस प्रकार जब आप यहां कोई साधना करते हो, जब तक ये सच साधना आपको नहीं मिली, अपने पुण्य के आधार से स्वर्ग चले गए, उस स्वर्ग में आपको देव बना दिया, देवता या कोई और पद दे दिया, या वैसे कॉमन स्वर्ग में आप ठाठ करो, लेकिन वो पुण्य आपके ही समाप्त हो रहे हैं। जिस दिन आपकी पुण्य पूंजी समाप्त हो जाएगी, उसी दिन आपको वहां से, जैसे यहां से मार दिया जाता है, वहां भी आपको मार दिया जाएगा। अचानक मृत्यु होगी, तुरंत नरक में, फिर नरक में डाले जाओगे। तो इस झंझट से पीछा छुटवाने के लिए आपको ये परमेश्वर कबीर जी की शरण लेनी पड़ेगी, और इन नकली कबीर पंथियों संतों से भी आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि उनके पास यथार्थ भक्ति विधि नहीं है, परमात्मा का यथार्थ ज्ञान नहीं है। तो पूर्ण संत से, और जिसके पास वो मोक्ष जड़ी हो, वो मंत्र है सतनाम और सारनाम, वही आपको इस जन्म और मृत्यु के झंझट से छुटा सकता है। तो वो जड़ी इस दास को परमात्मा ने दे रखी है। आप अब शिक्षित समाज है, पढ़ा लिखा एजुकेटेड जो है ना पूरा समाज हो गया है, बहन बेटी भाई। अब आप इस तत्व ज्ञान को जो दास आपको बताता है, जो परमेश्वर ने इस दास को बताया है, सदग्रंथों में विद्यमान है, इसकी तुलना करो आपके गुरुजियों के ज्ञान से, और फिर देखो वो अधूरे हैं या पूरे। टोटली इनकम्प्लीट पाओगे आपको, सारे नकली कति टोटली पूरे पृथ्वी पे। आप इस बात को अभिमान मत समझना, इसको तत्व ज्ञान समझना, ये सच्चाई समझना। अभिमान नहीं करता ये दास, क्योंकि अभिमान तो वो इंसान करे जिसका कुछ अपना अपना कोई योगदान हो। ये तो परमेश्वर कबीर जी का दिया हुआ ज्ञान है, दास को उन्होंने बुद्धि दे दी और आपको बता रहा हूं समझा के, इतना ही मेरा योगदान है। तो किसी के पास भी पृथ्वी पे आज मोक्ष मार्ग नहीं है, वो केवल इस दास के पास है, और आप भी इसको ग्रहण करो, और अपने जो भी आपका साथी है, बहन भाई है, मित्र है, रिश्तेदार है, उनको भी समझाओ, और ये नाम उनको दिलाओ, कल्याण करवाओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, कबीर परमेश्वर, कबीर देव, कबीर साहब, अपनी प्यारी आत्माओं को काल के जाल को समझाने के लिए आप ही इस पृथ्वी लोक पर आते हैं। जब वो यहां आते हैं, अपने तत्व ज्ञान को प्रचार करते हैं, उसमें हम परमात्मा को पहचान नहीं पाते, क्योंकि इस काल भगवान ने, ब्रह्म ने पूरे मानव समाज में अज्ञान भर रखा होता है। उस अज्ञान आधार से अज्ञानी ऋषियों, संतों और गुरुओं ने परमात्मा को निराकार बता रखा होता है। उस सिद्धांत के आधार से हम परमात्मा को निराकार मानते रहते हैं, और जब परमेश्वर इस धरातल पर आते हैं, हम उसको पहचान नहीं पाते, और काल के दूत उस परमेश्वर का विरोध करते और करवाते हैं। क्योंकि परमात्मा जब आते हैं, वो यही तत्वज्ञान प्रचार करते हैं जो दास आपको सुना रहा है, उन्हीं के द्वारा प्रचार किया हुआ। अज्ञानी संतों ऋषियों के द्वारा सुना गया लोकवेद होता है, लोकवेद कहते हैं घर का ज्ञान, अपना मन घड़ंत, अपना अनुभव,